शांति। आज हम सब के बीच में भ्राता स्वामीनाथन जी उपस्थित हैं, उनका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आपने कैलिकट यूनिवर्सिटी से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हुई है, तत्पश्चात आप मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फैकल्टी में 7 वर्ष कार्यरत रहे और पिछले 7 वर्षों से आप कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। वर्तमान समय आप लुएंस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर कंसल्टेंट की हैसियत से कार्यभार संभाल कर रहे हैं। आप पिछले 10 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हो और नियमित ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण एवं राजयोग का अभ्यास करते हैं। आप बहुत ही कुशल वक्ता हो, जो एक बार उनसे सुनता है तो बार बार सुनने की उत्सुकता होती है। आप मितभाषी, मृदुभाषी, नम्रता और सरलता की मूर्त होने के कारण आप एक ही प्रवचन में सबके प्रिय बन जाते हो। आपने कई कंपनीज में सेमिनार और वर्कशॉप भी कंडक्ट किया हुआ है, जैसे कि सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, केएम हॉस्पिटल मुंबई, जेजे हॉस्पिटल मुंबई, MGM Medical College, Bhabha Automatic Research Center, Reliance Energy, Videocon Limited, Airport Authority of India, ऐसे कई स्थानों पर आपने मुख्य रूप से कंडक्ट किया हुआ है और आपके मुख्य विषय है मेमोरी मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ल्ड ऑफ स्माइल, जर्नी विथ हार्मनी, माइंड मैनेजमेंट, लिविंग लाइफ लवंगली, ऐसे कई टॉपिक्स को लेकर के आपने कंडक्ट किया हुआ है और आज हम उनसे रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप टॉपिक पर प्रवचन सुनेंगे। और अभी मैं ब्रह्मा कुमार भाई को निवेदन करती हूँ कि स्वामी नाथन भाई का फूलों से और बैजिस के द्वारा स्वागत करें।
ओम शांति, गुड इवनिंग, सभी बोलेंगे गुड इवनिंग और नमस्ते। आप सभी डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है, वेलकम। और आज का एक बहुत बहुत सुंदर विषय है और वो है रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, सम्मानीय संबंध। और दोस्तों, जब हम संबंध की बात कहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है स्नेह, प्रेम, प्यार, लव, मोहब्बत, राइट, है ना। और क्योंकि हम आपकी दिल की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जहां भी ये स्नेह, प्रेम, प्यार की बात आती है तो स्वतः मन में गीत गुनगुनाने लगता है। और क्योंकि मैं आपकी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह समझता हूं तो आपकी दिल की भाषा समझते हुए आज आपके सामने, है ना, एक बहुत सुंदर बाबा के एक वंडरफुल रत्न को सामने लेकर आऊंगा। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये संबंध की बात है तो क्यों ना आप एक स्नेह का एक बहुत सुंदर गीत गाइए। तो हम सभी मिलकर बहुत जोर से तालियों से स्वागत करते हैं ज्ञान सरोवर के आदरणीय नितिन भाई जी का। आइए नितिन भाई जी। नितिन भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत है ना। और क्योंकि मैंने आपको बुलाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी ऑडियंस, इतने भाई बहनों की दुआएं मुझे मिलेंगी कि नहीं। हाँ, क्योंकि है ना। अच्छा, तो नितिन भाई को एक अच्छा मस्त गीत गाना, ठीक है, चलो ओवर टू नितिन भाई।
आप भी गाइए मेरे साथ, गाएंगे ना सभी, जरूर, क्योंकि ये हम सबके दिल की आवाज है। प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जीवन में गर ना खिले तो
कांटों से भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंसके उस पार जाना पड़ेगा।
दोस्ती का भी देखो क्या वंडरफुल फायदा होता है। हम और नितिन भाई इतने अच्छे दोस्त हैं, जब बुलाए आ गए, है ना। नितिन भाई वापस मत जाना मत, है ना। इस प्रोग्राम के अंत में भी एक गीत गाना, ओके, है ना। क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर हूं, है ना। मुझे मालूम है कि मेरी लेक्चर कितनी भी बोर क्यों ना हो, आप लोग वेट करेंगे, धीरज रखेंगे, क्योंकि नितिन भाई आने वाले हैं। चलिए इसी वंडरफुल ह्यूमरस नोट में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, संबंधों के बारे में। और दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं एक महाभारत के एक सुंदर दृष्टांत से। दृष्टांत कुछ ऐसा है, हम सभी ने सुना है कि जब पांडव भाई जो थे, जब वो वनवास में जाते हैं और जंगल में जाते जाते अचानक वो भटक जाते हैं, चलते चलते वो इतना थक जाते हैं, उनको इतनी प्यास लगती है कि एक जगह वो विश्राम के लिए बैठते हैं, लेकिन प्यास इतनी होती है कि युधिष्ठिर अपने सबसे छोटे भाई नकुल से कहता है कि यहां कहीं नजदीक अगर पानी की व्यवस्था हो तो प्लीज मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आइए। नकुल जाता है और नजदीक एक बहुत सुंदर उसको तालाब दिखाई देता है जिसमें बहुत स्वच्छ पानी। तो नकुल को लगता है सबसे पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर भाइयों के लिए मैं पानी लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे वो पानी पीने के लिए उतरता है तो उसको एक आवाज आती है कि हे नकुल, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे और उसके बाद आप पानी स्वीकार करना। तो हम सभी को पता है नकुल को इतना प्यास लगता है कि वो पानी पी लेता है और उसको उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर एक एक भाई को भेजता है और अंत में जब युधिष्ठिर देखता है कि कोई भी भाई वापस नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर खुद पानी की तलाश में जाता है। जब वो तालाब के वहां पहुंचता है तो देखता है कि चारों भाई वहां मृत पड़े हैं। तो युधिष्ठिर को भी इतना प्यास लगता है कि वो कहता है कि सबसे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। और जैसे ही वो पानी के लिए झुकता है तो फिर से वो आवाज सुनाई देती है कि हे युधिष्ठिर, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे, नहीं तो तू भी तेरे भाइयों की तरह मारा जाएगा। तो युधिष्ठिर पूछता है, अच्छा बताइए आपका प्रश्न क्या है। और इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में एक बहुत सुंदर प्रश्न वो यक्ष युधिष्ठिर के साथ करता है। और उसका प्रश्न ये था कि हे युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे आश्चर्यजनक सत्य कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल ट्रूथ, द फैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड? और युधिष्ठिर बहुत सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि हर दिन हम अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को अपनों से दूर होते हुए, अपने से बिछड़ते हुए और काफी बार उनकी मृत्यु होते हुए हम देखते हैं। लेकिन इस संसार का सबसे आश्चर्यजनक सत्य यह है कि इन सभी की मृत्यु देखते हुए भी जो जीवित हैं वो इस तरीके से जीवन जीते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे, हमेशा स्थायी रहेंगे। अभी हमें कभी इस संसार से नहीं जाना है, इस संसार का सबसे आश्चर्यजनक सत्य है। वी फेलो बींग्स एवरी डे वी सी डेथ अराउंड अस, येट द लिविंग दे लिव एस इफ वी आर नेवर गोइंग टू डाई। दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग द फैक्ट, द मोस्ट सरप्राइजिंग ट्रूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की भाषा में अगर बात करें, तो हम बॉम्बे के भाई बहनों को ना रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है। बोरीवली रिटर्न, दादर रिटर्न, गोरेगांव रिटर्न, आप भी यहां पर आए हो ना तो रिटर्न टिकट लेकर आए हो। अगर कुछ एक डेलीगेट्स की रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं, वेटिंग लिस्ट है, तो बार बार जाकर पीएनआर नंबर देखेंगे, आरएसी हुई क्या, आरएसी हुई क्या। और अगर आपको पता लगता है कि वो वेटिंग लिस्ट है तो यहां के कोई रेलवे अधिकारी से अपना संबंध बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो दोस्त बन गए तो उनको अपना पीएनआर नंबर देकर करेंगे, कहेंगे कि प्लीज वीआईपी कोटा करा देना, राइट? हम रिटर्न टिकट के बहुत बहुत फोकस होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं इस जीवन रूपी यात्रा में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम सभी के पास एक रिटर्न टिकट है, एक दिन हमको वापस जाना है। और जब इस परम सत्य, इस आध्यात्मिक सत्य को हम महसूस करते हैं तो हमें यह फीलिंग आती है कि सचमुच हम सभी मुसाफिर हैं, सचमुच हम सभी मेहमान हैं। और जब यह कंसेप्ट समझ में आती है तो हमारे जो संबंध हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल, सम्मान्य हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन हमको जाना है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। तो दोस्ती है सेफ्टी और दुश्मनी है हमारे संबंधों में एक्सीडेंट। और अगर इस संबंधों की एक्सीडेंट अगर कम करनी हो तो हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, उनका बहुत सुंदर एक स्लोगन था, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। आप रिपीट करेंगे, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। बी इन अ हाई स्टेट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो लोग हाई स्टेट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। और दोस्तों, आप सभी के परमिशन से आज का ये जो सुंदर टॉपिक है, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, मैं है ना हमारे आदरणीय दादी जी की स्मृति पर अर्पण करता हूं। आप जोर से तालियां बजाइए। जब हम ये टॉपिक बना रहे थे और हम हमारे जो टीचर और सदगुरु शिव बाबा के साथ जब इंट्रैक्शन चल रहा था, तो मेरे सामने तीन बातें थी। एक कि मेरे सामने टारगेट ऑडियंस कौन है, They're all transport. दूसरा, इस सेमिनार का कैनोपी थीम क्या है, सेफ्टी। तीसरा, मुझे कौन सी जिम्मेवारी दी गई थी, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं मैंने ये कोशिश की है कि त्रिमूर्ति संगम होकर हम आगे बढ़ते जाएं। आप इस सेशन को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करिए। लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन। मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं कि अगर आपको कहीं ना कहीं बोर लगे तो बहुत आराम से सो जाइए, है ना। और जिन लोगों को अगर लगता है कि नहीं, यू रिस्पेक्ट मी, तो बीच बीच में तालियां बजाते रहिए ताकि जो सो रहे हैं वो अचानक जाग जाएं और आपको थोड़ी ना कभी दुआएं मिलेगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा से, इस जीवन रूपी यात्रा। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो हमारा जो सबसे फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वॉकिंग, चलना, राइट। छोटा बच्चा चलना आरंभ करता है और जैसे ही छोटा बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, वो अपनी मां के गोद में पिता के सानिध्य में वो सेफ्टी का अनुभव करता है। सो वी आर डीलिंग विद द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज वॉकिंग एंड द रिलेशनशिप, जो संबंध आज हम डील कर रहे हैं वो है चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, बच्चे और माता पिता का जो रिलेशनशिप है। बहुत अच्छी बात कहते हैं, अ जर्नी में बी लॉन्ग और शॉर्ट बट इट मस्ट स्टार्ट एट द वेरी स्पॉट वन फाइंड्स इटसेल्फ। जब जागे तब सवेरा, है ना। जब मैं कुछ वर्ष पूर्व जब मैं ब्रह्मा कुमारी में नया नया था, जब मैं विद्यालय में जाता था तो मुझे बीकेस जो होते हैं ना ब्रह्मा कुमार से एक अजीब डायलॉग बोलते हुए सुनाई दिए जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। वो एक दूसरे को बोलते हुए मैंने सुना कि मैं 3 साल का बच्चा हूं, मैं 2 साल का बच्चा हूं, मैं 1 महीने का बच्चा हूं। तो दिखते तो 30-35 वर्ष के थे, ये 2 महीने का बच्चा, ये 4 साल का बच्चा कैसे हुआ। तो जब मैंने इस पर थोड़ी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि जिस दिन हम इस विद्यालय में आते हैं और जिस दिन मुझे अपना सेल्फ आत्मा का ज्ञान मिलता है उस दिन मेरा अलौकिक जन्मदिन होता है। तो भले शारीरिक रूप से हम 30 वर्ष होंगे 40 वर्ष होंगे लेकिन हमारा अलौकिक जब ज्ञान रूपी जब जन्म मिलता है ना। तो आप सभी का जन्मदिन मालूम कौन सा है, कल था आपका बर्थडे। तो ओके जस्ट वन मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। तो आपका बर्थ डेट कौन सा था याद है, व्हाट इज योर बर्थ डेट, व्हाट इज योर बर्थ डेट है, कौन 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 सा है बर्थ डेट आपका, 16 16 0708। और जब मैं आपके बर्थडे को देख रहा था तो मैंने देखा कि भाई आप लोग बहुत लकी हो, आपका बर्थ डेट इतना वंडरफुल है 16 0708। 16 मींस आप सभी 16 कला संपन्न बनने वाले हैं इसलिए आपका 16 07। ओके 07 मतलब आत्मा के जो 7 गुण हैं, है ना, तो 7ों गुण आप में आ जाएगा। देयरफॉर दैट इज हां दिस इज योर हैप्पी बर्थडे। चलो भाई डेट आ गई, तालियां तो बजाइए, है ना। तो 16 आप सभी 16 कला संपन्न बनने वाले हैं, 07 मतलब आत्मा के जो 7 गुण हैं वह आपके जीवन में है इसलिए 07। और 08 पर मैं विचार कर रहा था कि जब भी हम अपने राशिफल किसी हॉरोस्कोप किसी को दिखाते हैं ना तो वो बहुत खुश होते हैं जब वो कहते हैं आप में राजयोग है, है ना। तो आप यहां पर आए हो क्योंकि आप राजयोग यहां सीख रहे हो, ये राजयोग से अष्ट शक्तियां आपको मिलती है। तो 08 स्पीक्स अबाउट अष्ट शक्तियां, भाई तालियां तो बजाइए। तो आप सभी को इस नए जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और क्योंकि आज आपको अपने पिता का परिचय मिला, छोटा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसको अपना पिता का परिचय मिलता है। तो आप आज आपको अपना पिता का परिचय मिला ना, बहुत प्रेम से हम उनको क्या कहते हैं, बाबा, मेरा बाबा, है ना। आपके अपने उस पारलौकिक पिता का परिचय मिला और यहां बैठकर क्या वंडरफुल सीन है, आप सभी 2 दिन के बच्चे कितना क्यूट, कितना ब्यूटीफुल, कितना लवली दिखाई दे रहे हैं ना, यह भी वंडरफुल बात है। चलिए जीवन रूपी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। सेफ्टी रूल फॉर वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो कौन सी सेफ्टी रूल हम करेंगे इसको हम लेंगे, फिर चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए इस बात को हम आगे लेकर आएंगे। द फर्स्ट सेफ्टी रूल इज ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, राइट। वैसे इसका नाम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बाद में पड़ा, 1934 में यूके के आयरलैंड में द मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट मिस्टर बालिशा ने सबसे पहले ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का कंसेप्ट लेकर आए और उन्होंने देखा कि जब पेडेस्ट्रियन जब रोड क्रॉस करते थे तो काफी एक्सीडेंट होता था, तो वो क्या करते थे, ये ऑरेंज बीकॉन्स ऑरेंज लाइट को साइड में रखते थे। लेकिन देखा एक्सीडेंट बढ़ता गया, फिर कुछ समय उनके बाद लगा कि शायद रोड में कुछ साइन देना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दिया ताकि लोगों को बहुत सहज उस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से हम क्रॉस कर सकते हैं। जीब्रा क्रॉसिंग नाम कैसे पड़ा? तो हंसी मजाक में कहते हैं कि एक बार यूके में एक जीब्रा रोड क्रॉस कर रहा था और अचानक एक्सीडेंट हो गया जिससे बहुत ट्रैफिक जाम हो गई, है ना? तो फिर इसलिए कहते हैं उसका नाम जीब्रा क्रॉसिंग फिर बाद में रखा गया। लेकिन अंतर क्या है कि जो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है उसमें ब्लैक में व्हाइट करते हैं, लेकिन जीब्रा में जो होता है व्हाइट में ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। लेकिन आप जीब्रा जैसे जानवर को थोड़ा विशेषता देखेंगे ना, तो दो विशेषताएं बहुत वंडरफुल है। जीब्रा की पहली विशेषता है कि इट इज द ओनली एनिमल विच इज गॉट अ कलर साइट। बाकी सभी जानवरों की साइट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जीब्रा की जो साइट है वो कलर साइट है। दूसरी जीब्रा की बहुत सुंदर विशेषता है कि वो अपने कान को ना 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है, राइट? तो दोस्तों, जब भी आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करें ना, तो जीब्रा को बहुत प्रेम से याद करना, है ना? एक तो आपकी साइट बहुत क्लियर होनी चाहिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे देखो, और दूसरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है वो आपके कान है, लिसनिंग स्किल्स। जब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग करते हो, भले हम बात नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन हमारे आईज और हमारे जो कान है सुनने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चैनलाइज द कम्युनिकेशन एम्पैथेटिकली। हमें अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन हमें कम्युनिकेट करना एम्पैथेटिकली। एम्पैथेटिक मींस इमोशंस, भावना। छोटा बच्चा जब रोड क्रॉस करता है ना, जब अकेला होता है, लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, डर जाएगा क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर उस छोटे बच्चे के साथ उसकी मां होगी तो बच्चा क्या करेगा? अपना हाथ मम्मी के हाथ में दे देगा, टोटली रिलैक्स, नाउ इट्स योर प्रॉब्लम टू टेक केयर ऑफ मी, राइट? है ना? तो उसी तरह राजयोग में एक बहुत सुंदर विधि होती है, जब हम अपने बुद्धि रूपी हाथ उस परमात्मा के हाथ में दे देते हैं, और जैसे हमने अपने बुद्धि रूपी हाथ उस परमात्मा के हाथ में दे दिए, वी फील एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली सिक्योर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ हम कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं और कहते हैं, सर मैं अपने बच्चे को लेकर आया, आप थोड़ा उनको समझाओगे क्या? मैं कहता हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रॉब्लम? सर कितनी बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल समझता नहीं है। मैंने कहा, टेल मी क्या इंस्ट्रक्शन देते हो? कहते, सर राजू है इसका नाम, कितनी बार उसको कहते हैं राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर, और हमेशा राजू फ्रिज डोर को बैंग करता है। सर प्लीज आप उनको समझाइए ना। मैं कहता हूं, द प्रॉब्लम इज नॉट विथ राजू, द प्रॉब्लम इज विथ यू जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। राजू इज ए थरो जेंटलमैन। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर, राजू जो होता है ना, उसकी बुद्धि द वर्ड डोंट कैनॉट बी विजुअलाइज्ड, उसका वो चित्रीकरण नहीं कर पाता है। तो उसकी बुद्धि में क्या इमेज आता है? राजू बैंग द फ्रिज डोर, और हमेशा बैंग करता है, ओ माय गॉड, मम्मी ने मुझे मना किया था। सो चेंज द कम्युनिकेशन, राजू क्लोज द फ्रिज डोर स्लोली। आप फ्रिज डोर को बहुत धीरे से बंद करो, इट्स एन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। हमारे आदरणीय शिवानी बहन जी जो काफी है ना बहुत सुंदर एक काउंसलर की तरह आजकल सारे विश्व में कर रहे हैं, उनका जब मैं केसेस सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और शिवानी बहन को मैंने फोन करके कहा, शिवानी बहन आप भी जरूर उनके केसेस सुनना। मैंने कहा, शिवानी बहन आपकी क्या विशेषता गांव, हम जहां पे रहते हैं नरूल नवी मुंबई में, एक मम्मी ने अपने छोटे बच्चों को लेकर आकर कहा, सर वो शिवानी बहन की केसेस मिल सकती है? हमने कहा, जरूर ट्राई करेंगे। बोला, सर ये हमारे बच्चे की विशेषता है कि टीवी में से दो प्रोग्राम देखता है, एक तो वो अपना कार्टून शो और दूसरा आपकी शिवानी बहन को बहुत सुनता है। मैंने कहा, वाह ये तो भी बहुत बात है, मींस ही इज इवन अ चाइल्ड इज एबल टू कोरिलेट। और जब मैं उनके केसेस सुन रहा था तो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी जो मैं उनके परमिशन से शेयर करता हूं। जब एक छोटा बच्चा जो होता है, जब वो गैस की तरफ आता है ना, तो अक्सर मम्मी उसको मना करती है, तुम कितनी बार मना के यहां पे नहीं आना, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड? ये मेरे मन में भी काफी प्रश्न था। लेकिन उनका एक बहुत सुंदर सॉल्यूशन उन्होंने दिया कि जब बच्चा बार बार गैस में वो गर्म की तरफ आ रहा है तो टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, उनको वो सेफ्टी दो। आप क्या करो, आप वो छोटे बच्चे का हाथ अपने हाथ के साइड में ले लो और बच्चे को कहो, अच्छा आपको ये छूना है, चलो हम साथ में इसको ट्राई करते हैं, टच करते हैं, और धीरे धीरे आप उस गैस की तरफ लेकर जाओ। आप बिल्कुल डरिए नहीं क्योंकि आप वहां पर हैं, ढाल की तरह खड़े हैं, और जब आप धीरे धीरे उसको लेकर जाते हो, जैसे ही वो बच्चा गर्मी फील करता है, मामा प्लीज लेट मी कम बैक, वो वापस आता है। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि बच्चा अनुभव कर रहा है, ये तो काफी बार हम उसको अनुभव नहीं कराते तो वो इंक्विसिटिवनेस रहता है, और मम्मी जब नहीं रहती तो अचानक वो फिर उसको टच करने की कोशिश करता है, राइट? और दूसरी बात ये फायदा ये होता है कि वो छोटे बच्चे का मम्मी पर वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो विश्वास बैठ जाता है कि मम्मी जो कह रही है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रैशनल है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करें तो वी हैव टू चैनलाइज द कम्युनिकेशन एम्पैथेटिकली। दूसरी सेफ्टी रूल वॉकिंग के लिए बहुत जरूरी है, ऑलवेज वॉक इन द डायरेक्शन फेसिंग द ट्रैफिक। अब जो ट्रैफिक वहां से आ रही है तो हम इस तरफ से चले ताकि हम ट्रैफिक को देख सके। और अगर ट्रैफिक जो है, अगर लग रहा है कि कोई गाड़ी मेरे सामने आ रही है तो प्लीज, इसलिए फायदा होता है कि हम उसको साइड ट्रैक कर सकते हैं। सो वी आर ऑलवेज सेफ व्हेन वी वॉक इन द डायरेक्शन फेसिंग द ट्रैफिक। बच्चों के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई जॉयज एंड सॉरोज। कैसे होता है? छोटा बच्चा जो होता है दौड़ दौड़ कर जाकर एक दीवार से टकरा जाएगा, मम्मी दौड़ कर जाएगी, बच्चे को संभालेगी और उसके सामने दीवार को मारेगी, देख तेरे सामने मैंने दीवार को मारा ना, अब शांत हो जा ना। बच्चे को क्या मैसेज मिलता है? बच्चे को यह मैसेज मिलता है कि मेरे पेन के लिए दीवार जिम्मेवार है। दीवार ने क्या किया? दीवार तो खड़ा था, गलती तो आपकी थी ना जो आपको टकराए। सो वी आर गिविंग ए मैसेज, फॉर एवरी पेन ऑफ योर्स समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन बच्चों को समझाना है, आपने टक्कर खाई है, दीवार के कोई इमोशंस नहीं, लेकिन आप तो देख सकते हो। अगर कोई गाड़ी सामने आ रही है, हम एकदम पर्वत की तरह डटे रहें तो एक्सीडेंट होगा। नदी बनकर साइड से बह जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शक्ति, एक कला है। तो बच्चों को भी ये बचपन से हम सिखाएं कि अगर आप सुख या दुख का अनुभव कर रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और बहुत जरूरी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो बच्चों को मिलता है वो है माता पिता से बच्चों को संस्कार मिलना। इसलिए जब भी हम बच्चों से इंटरेक्ट करें तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वॉकिंग। दूसरा, हम चलते हैं। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जोर से बोलेंगे, साइकिल, है ना। छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना तो धीरे धीरे उसको साइकिल की बहुत याद आती है। अगर वॉकिंग चाइल्ड पेरेंट का संबंध था तो बाइसिकल कौन सा हो सकता है? वो है स्टूडेंट टीचर का संबंध, राइट? क्योंकि वो सीखना आरंभ करता है ना। वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में अगर जाएगा तो बाइसिकल लेकर जाएगा, है ना, बिकॉज दैट्स अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। एक बहुत सुंदर स्लोगन हम कहते हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी हुज डेस्टिनेशन एक्सपैंड्स एज वी ट्रेवल। जीवन के अंत तक हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न। 10-12 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में पहली बार आया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि बड़े छोटे युवा जो हैं ना, बहने भाई सब लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और सबके हाथ में नोटबुक है और सभी नोट्स लिख रहे हैं। और क्योंकि मैं प्रोफेसर था तो ये सीन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यहां के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं ना। और मैंने देखा जो बूढ़े सभी पढ़ रहे हैं, फिर मेरे मन में भी ये उत्सुकता आई कि ये क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस। हमने देखा हमारे यहां बहुत सीनियर भाई बहने करीब 30 वर्ष से ज्ञान ले रहे हैं, 40 वर्ष से इस विद्यालय में चल रहे हैं, लेकिन हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक वो परमात्मा जो टीचर है, जो सदगुरु है, उसके सामने बैठकर वो पढ़ाई करते हैं और वो अपना नोट्स बनाते हैं। इसलिए पढ़ाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो सेफ्टी रूल फॉर बाइसिकल क्या होना चाहिए? ऑलवेज टीच द चाइल्ड टू लर्न बैलेंस। Always teach the child to learn balance. अब जब बच्चा साइकिल चलाता है ना, तो अगर एक दो बार गिर भी गया ना, हम कहते हैं नथिंग टू वरी, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। बैलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सेफ्टी फॉर बाइसिकल इज बैलेंस, उसी तरह स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में एक सेफ्टी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेप्ट फेलियर्स एंड स्प्रिंग बैक टू सक्सेस। अगर आप जीवन रूपी यात्रा में कहीं गिर गए तो बाइसिकल से सीखो कि हम फिर से उठकर फिर से उसको चलाते थे, कितने उमंग उत्साह के साथ हम चलाते थे। इसलिए हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, है ना, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो तब पता चलती है जब यू आर मेट विद अ डिजास्टर, यू आर मेट विद एन एक्सीडेंट। उस समय आपकी मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10 questions यू आर नॉट इवन एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, लेकिन उस समय भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड सेफ्टी रूल फॉर अ बाइसिकल इज नेवर फॉलो अनदर राइडर विदाउट चेकिंग द ब्रेक्स, मीन्स कीप सेफ डिस्टेंस, राइट। काफी बार हम देखते हैं ना, एक साइकिल के पीछे दूसरे साइकिल चला रहे हैं, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि क्या वो सेफ डिस्टेंस है या क्या मेरी ब्रेक इतनी पावरफुल है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेक को चेक करना ये बहुत जरूरी है। 12 वर्ष पहले जब मुझे पहली बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में निमंत्रण मिला साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग के कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए, और 12 वर्ष पहले मैं भी उसी तरह बैठा था जैसे आप बैठे हैं। तो जब मैं ऑफिस से छुट्टी लिया और मैं अपने ऑफिस के कलीग्स फ्रेंड्स को कहा कि भाई अभी मैं माउंट आबू जा रहा हूं, 3 दिन वहां मैं सेमिनार करूंगा, तो सबने पूछा भाई कहां जा रहे हो, मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो हमारे बहुत प्रिय मित्र इमीडिएटली हमें कॉशन किए, स्वामी भाई वहां प्लीज मत जाना। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, भाई वंडरफुल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके। मैंने कहा कौन सा रूल है, बोला ब्रह्मा कुमारी जाने से ना बाहर का खाना छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा लेकिन ऐसा क्यों रूल बनाया, बोला वो तो नहीं पता। मैंने कहा यार आप मुझसे ये डायलॉग बोल रहे हो तो यू शुड नो द लॉजिक ऑल्सो ना, बोला वो नहीं पता लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मन में उत्सुकता है कि ये ऐसा रूल क्यों है। मैंने कहा भले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग का कॉन्फ्रेंस है तो वहां कुछ तो रैशनैलिटी होगी, कुछ तो लॉजिक होगी, लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। बांद्रा टर्मिनस में जब ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो इंडियन रेलवे से काफी अनाउंसमेंट हो रहा था, प्लीज बाहर का भोजन मत करना, प्लीज ध्यान दे के खाना। मैंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी का डायलॉग इंडियन रेलवेज ने कब से अडॉप्ट कर लिया ना। मैंने कहा ये वंडरफुल, लेकिन मैंने देखा इंडियन रेलवेज अगर ये अनाउंसमेंट कर रही है तो उसके पीछे कोई राज है, और राज बहुत सिंपल है कि भाई अगर कोई पॉइजन देकर अगर भोजन दे देता है तो हमारी चोरी भी हो सकती है, तो सुरक्षा का नियम है। लेकिन व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ब्रह्मा कुमारी। और उस उद्देश्य से जब मैं यहां पर आया और जब मैं यहां उसका लॉजिक समझा, मैंने कहा कुछ भी कहो यार, ब्रह्मा कुमारी इज वन स्टेप अहेड देन इंडियन रेलवेज, क्योंकि वो रेलवेज जो है सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात करती है लेकिन ब्रह्मा कुमारी मानसिक सुरक्षा की बात करती है, मन की सेफ्टी की बात करती है। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। तो ये जो परमात्मा ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, उस रहस्य को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अंधश्रद्धा युक्त जब हम भावना करते हैं तो काफी बार रिचुअल्स हो जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ज्ञान युक्त भावना, विवेक युक्त भावना जब आ जाता है उसको आध्यात्मिकता कहते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और वो आप यहां जब 2-3 दिन है तो उसको वो समझने की जरूर जरूर कोशिश करिए। नेवर फॉलो अनदर राइडर विदाउट चेकिंग द ब्रेक्स। और हम कहते हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, आप में हर एक स्टूडेंट में अपनी एक विशेषता है, अपनी एक कैपेसिटी है, उस विशेषता उस कैपेसिटी को समझना बहुत जरूरी है। 60 स्टूडेंट्स हैं, अब 60 स्टूडेंट्स को वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी नंबर वन। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पेंटिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे। और थैंक्स टू इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग आईपीएल से जब से चालू हुआ है, थैंक्स आईपीएल, आजकल के मम्मी डैडी कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं तो भी थोड़ा समय क्रिकेट तो खेल यार तू, है ना, थैंक गॉड, है ना। पहले कितना डायलॉग हम बोलते थे, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, लेकिन कितना भी बोलने से वो फायदा नहीं हुआ जितना ये आईपीएल लीग ने ये फायदा कराया। बट हमारे विद्यालय में कहते हैं वी शुड बी अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बोथ द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिक, द राइट ब्रेन इज क्रिएटिव, लॉजिक ब्रेन एंड क्रिएटिव ब्रेन, रचनात्मक ब्रेन। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, यू आर यूनिक, है ना। आप इस देखते हैं ये विद्यालय का जो कार्य संचालन हो रहा है कैसे हो रहा है, इतनी वंडरफुल, है ना। मैं तो इतना प्रभावित हुआ क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है, उस विशेषता को वो ईश्वरीय सेवा समझकर कार्य में लगा रहे हैं। इसे बहुत सिस्टमैटिक, हर एक व्यक्ति के मन में ये मानसिक अवस्था है कि मैं ईश्वरीय सेवा कर रहा हूं और ईश्वर ने मुझे चुना है तो मेरे में जो विशेषता है उसको मुझे सेवा में लगाना है। इसलिए देखो ये वंडरफुल कार्य आप देख सकते हैं, और यही संस्कार एक टीचर को स्टूडेंट के साथ हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। सो द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज बाइसिकल। द थर्ड हम चलते हैं क्या हो सकता है? वॉकिंग से हम आगे बढ़े, धीरे धीरे बाइसिकल में गए, तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, जरा गेस करिए। हाँ जी, हाँ भाई, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, राइट आंसर बाइक, और कहते हैं मोटरसाइकिल, राइट। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है विच वी कॉल इट एज द जॉब और प्रोफेशन। देखा जाता है जब भी किसी को जब जॉब मिल जाती ना, विशेषकर हमारे बॉयज को हमने देखा है ना, वो कार खरीदने नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्या खरीदेंगे? बाइक, है ना। और शायद पहली सैलरी में कहेंगे मम्मी मुझे बाइक खरीदना है, बिकॉज दैट इज देयर पैशन एट दैट पर्टिकुलर एज में, जॉब प्रोफेशन। तो मोटरसाइकिल में कौन सी सेफ्टी रोल होनी चाहिए, हमारे प्रोफेशन में कौन सी सेफ्टी का हम ख्याल रखें, इसको हम जरूर आगे देखेंगे। कहते हैं वी मस्ट रन वॉक स्टम्बल ड्राइव और फ्लाई, बट लेट अस नेवर लूज साइट ऑफ द रीजन फॉर द जर्नी और मिस अ चांस टू सी अ रेनबो ऑन द वे। हम रास्ते में कोई भी भले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम कहीं गिर भी गए ना, तो प्लीज आसमान की तरफ देखना, और अगर आसमान में अगर आपने इंद्रधनुष देख लिया तो आपका उस दिन जरूर जरूर सफल हो गया। इट स्पीक्स अबाउट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। तो हमारे जॉब और प्रोफेशन के साथ भी संबंध कुछ ऐसे ही होने चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेफ्टी रूल एज फार एज मोटरसाइकिल इज कंसर्न इज बाइक हैंडलिंग ड्राइविंग स्किल्स। ये जो आप चित्र देख रहे ना, प्लीज इस तरीके से प्रैक्टिस घर जाकर नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष कला की जरूरत होती है। लेकिन आप देखते हैं काफी लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज वो धीरे धीरे उस कला को सीख जाते हैं, वो आर्ट ले लेते हैं। आपने देखा काफी बार हमारे जो पुलिस के जो भाई बहने होते हैं, आर्मी, वो बहुत सारे बाइक को साथ में सिंक्रोनाइज होकर चलाते हैं, है ना। हार्मनी उन्होंने डेवलप की है, एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप किया, कितनी वंडरफुल तरीके से विदाउट एनी एक्सीडेंट, है ना, कितने किलोमीटर के किलोमीटर वो आराम से चले जाते, एक के ऊपर एक कितने लोग खड़े होते हैं, हमने भी वो सीन देखा है। बिकॉज धीरे धीरे वो आर्ट, वो स्किल हम सीखते हैं। जिस तरह ड्राइविंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वहां पे जब बाइक चलाते हैं ना, तो हम कभी ये डायलॉग नहीं बोल सकते हैं, बच्चा जब तू साइकिल चला रहा था एक दो बार गिर गया ना, तो बाइक में भी एक दो बार गिरेगा तो चलेगा। नो, वी कैनॉट मेक द डायलॉग यार, मम्मी डैडी देखते रहेंगे, जब तक पूरा नहीं सीखा मम्मी को डर भी लगता रहता है कि भाई बाइक कैसा चला रहा है, क्योंकि ही हैज टू हैव अ कंप्लीट एक्सपर्टाइज फॉर दैट। उसी तरह जॉब प्रोफेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जॉब सेटिस्फैक्शन टू जॉब डिलाइट। ये एक स्किल, ये एक आर्ट। हमने कल सभी ने सुना कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट तभी हो सकता है व्हेन द इंटरनल कस्टमर इज सेटिस्फाइड। एक्सटर्नल कस्टमर्स की तो हमने कल बात देखी, लेकिन आज एक स्टेप अहेड कि पहला इंटरनल कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब व्यक्ति खुद ही अपने काम से, है ना, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो दूसरों को संतुष्ट कैसे करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेटिस्फाइड वन सेल्फ। और वो कैसे कर सकते हैं? अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जॉब सेटिस्फैक्शन टू जॉब डिलाइट। एक बार मैं बेस्ट की यात्रा कर रहा था बस में, तो मैंने एक बहुत वंडरफुल कंडक्टर को देखा। अब कंडक्टर थे ना, वो एक बहुत रमणीक देखा मैंने, वो एंजॉय कर रहे थे पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त। और कैसे कर रहे थे कि जब भी कोई बस स्टॉप पहुंचते थे ना, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट जैसे बच्चों को सिखाते थे ना, वैसे ही वो बोलते सी फॉर चेंबूर कौन उतरेगा, एल फॉर एलपी कौन उतरेगा, वी फॉर वाशी कौन उतरेगा। और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, राइट। उनके जो कम्युनिकेशन विद द पैसेंजर वाज सो ब्यूटीफुल, है ना। एक जगह बहुत भीड़ हो जाती थी तो वो हंसते हंसते कहते थे, भाई वहां पर इतनी जनसंख्या यूपी की तरह कैसे कर दिया, थोड़ा आप इस तरफ आओ ना, है ना। वंडरफुल स्टाइल मैंने देखा, मैं उसको बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने देखा एक पैसेंजर ने 100 रुपए का टिकट दिया, तो मुस्कुराते हुए पूछा कहां जाना है, तो उन्होंने कहा आई हैव टू गो टिल चेंबूर। तो बोला मालूम है टिकट कितनी है, बोला सर मालूम है 7 रुपए। बोला 100 रुपए देता है और 7 रुपए की टिकट चेंज नहीं है, बोला साहब बिल्कुल चेंज नहीं है। तो ये मुस्कुराते हुए कहता है, यार आप सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी हो सके तो ये, है ना, कंडक्टर की भावनाओं को तो समझने की कोशिश करो ना, सभी लोग इस तरह करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा। और जैसे उन्होंने ये डायलॉग बताया, तो साइड में एक पैसेंजर खड़ा था, वो खड़े होकर कहता है सर नथिंग टू वरी, 100 रुपए का चेंज मैं आपको देता हूं, और इमीडिएटली उन्होंने वो दिया। सी द होल एनवायरमेंट वॉज ऑफ डिलाइट, करेक्ट। हमारे एक प्रोफेसर थे, क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने उनसे पूछा, भाई हमेशा हम डायलॉग तो बोलते रहते जॉब सेटिस्फैक्शन टू जॉब डिलाइट, एज अ प्रोफेसर मुझे आपसे सीखना है कि एक ही सब्जेक्ट वर्षों वर्षों हम पढ़ाते रहते हैं, भाई इसको आप डिलाइट कैसे करेंगे। तो उसने कहा स्वामी सर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमेशा ऑडियंस तो अलग अलग होती रहती ना, स्टूडेंट्स तो अलग अलग है। मैंने कहा वो तो मालूम है, लेकिन फिर भी यार कुछ ठोस कदम बताइए ना। बोला मैं आजकल यूज कर रहा हूं वो कदम का। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? बोला सर आजकल मैंने भी क्लास ज्वाइन किया है। मैंने कहा कौन सा क्लास? बोला सर आई हैव ज्वाइन कैलीग्राफी क्लासेस, यू नो, टू इंप्रूव माई हैंड राइटिंग। बोला सर मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, अब अगली बार क्लास में आइए। माई गॉड व्हाट अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, यू नो, मैं अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर रहा हूं। सी इट्स अ न्यू स्किल, एक आर्ट, एक कला वो सीख रहे, और उमंग उत्साह ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए अगर आपको आपके जॉब प्रोफेशन को एंजॉय, वो डिलाइट लेकर आना, तो एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए मैं जो हमारी यहां बहने बैठे ना, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप वापस जाएंगे ना अपने घर पर, जब आप किचन में जाएंगे, जब आप भोजन बनाएंगे, तो बहुत खुशी से, बहुत डिलाइट के साथ भोजन बनाइए। अगर आप गुस्से से भोजन बनाएंगे, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर में भोजन बनाती रहो? अगर इस मानसिक अवस्था से अगर आपने भोजन बनाया है ना, तो जो भी लोग आपका हाथ का भोजन खाएंगे उनको भी बड़ी तकलीफ हो जाएगी ना, है ना। इसे देखो, ये विद्यालय में एक बहुत वंडरफुल महत्व बताया गया है, ब्रह्मा भोजन। भाषण तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं यहां पहली बार विद्यालय में आया ना, तो ये विद्यालय की बहुत विशेषता देखी। मुझे बताया गया कि ये जो किचन में जो भाई बहने सेवा करते ना, है ना, वो योगी आत्माएं होते जो काफी वर्ष तपस्या कर रहे हैं। भाषण में तो कोई भी कर सकता है। मैंने कहा यार ये बहुत वंडरफुल बात है ना, और उस दिन से मेरे में लगन आ गई कि अगर मुझे योगी जीवन बनना होगा तो भाई भोजन पकाना सीखना होगा, है ना। तो आप जो भी भाई बहने हैं ना, कभी न्यू बॉम्बे में आएंगे तो स्वामी भाई से जरूर मिलना। मैं आपको ईश्वर की याद में बहुत स्नेह और प्रेम से इडली डोसा चटनी सांभर जरूर खिलाऊंगा। भाई तालियां तो बजाइए। और साथ साथ में तालियां उन सेवाधारी भाई बहनों के लिए भी बजाइए जो आपको बहुत ईश्वर की याद में ब्रह्मा भोजन बना कर देते ना। तो भाई रिलेशनशिप में we have to appreciate people, and that's what is very important. दूसरा जो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी रूल एज फार एज बाइक इज कंसर्न, एंड दैट इज टेक द लीस्ट ट्रेवल्ड वे। मैंने इंटरनेट में देखा काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, उसमें ये जो रूल था ना काफी जगह था, टेक द लीस्ट ट्रेवल्ड वे। और इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश किया तो ये बताया गया कि एज फार एज पॉसिबल, अगर आपको हाईवे में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और अगर आपके पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है विच इज मोटरेबल, जो सुरक्षित है, तो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द हाईवेज। उसका दो तीन फायदा हो सकता है। पहला फायदा तो यह है कि ट्रैफिक कंजेशन कम हो सकती है। दूसरा फायदा यह होता है कि हम अपने मंजिल पर जल्दी पहुंच सकते हैं। और तीसरा सबसे वंडरफुल फायदा है कि ऑयल प्राइसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल की खर्चा कम हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द बैरल प्राइस ऑफ ऑयल। इसे टेक द लीस्ट ट्रेवल्ड वे। और अगर हमें इसको जॉब अपने प्रोफेशन में अगर अप्लाई करना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज inculcate creativity, रचनात्मकता, and that is what is very very important. और हमें खुशी होती है बताते हुए, और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एक समय था अराउंड 4 to 5 years back जब इंडियन रेलवेज वॉज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 3-4 साल में ये इंडियन रेलवेज में ऐसा वंडरफुल क्रांति आया कि आज देश विदेश के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो इंडियन रेलवेज के मॉडल को सीखने और उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्यों वो परिवर्तन आया? बिकॉज उन्होंने वो क्रिएटिविटी, वो रचनात्मकता को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपने प्रोफेशन में इंप्लीमेंट किया। एक दो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। पहला एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं रो रो रेल। अब ये रो रो रेल क्या है, है ना, बहुत सिंपल है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो ना, जब ट्रेन कभी कोई स्टेशन में रुकती है और आजू बाजू आप देखते हो, तो पहली बार तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे साइड में एक ट्रेन खड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, है ना, और हरेक इसके ऊपर है ना एक ट्रांसपोर्ट की लॉरी खड़ी थी। मैंने कहा माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। और फिर मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। कि भाई रेलवे ने ये कहा ट्रांसपोर्ट के साथ, आप अपने लॉरी को इतना पेट्रोल खर्चा कर इतनी दूर जाते हो, समय पर भी नहीं पहुंचता है, चलो यार हम आपस में एक संबंध जोड़ लेते हैं, हम आपकी लॉरी को ड्राइवर के साथ सबके साथ हम ट्रेन में लेकर जाते हैं, आप हमें पैसा दे दीजिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन, सी अ ब्यूटिफुल क्रिएटिविटी, राइट। हमारे एक दोस्त थे रिसेंटली, वो माउंट आबू सेमिनार में आ रहे थे, तो उन्हें फोन किया, तो मैंने कहा आप सेमिनार जरूर जरूर अटेंड करना। कॉन्फ्रेंस के तीन चार दिन पहले मुझे फोन करके बताते, स्वामी भाई मैं कॉन्फ्रेंस में जा नहीं सकता हूं। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है? बोला स्वामी भाई मेरी वेटिंग लिस्ट टिकट है। तो मैंने भी कहा नथिंग टू वरी यार, आप ईश्वर के घर जा रहे हो ना, हो जाएगा। नहीं स्वामी भाई वो वेटिंग लिस्ट टिकट है। मैंने कहा होल्ड ऑन, मैं अपने कुछ एक रेलवे के दोस्तों से इंटरेक्ट करता हूं। जब मैंने अपने रेलवे के दोस्तों से इंटरेक्ट किया तो मुझे पता चला गाड़ी इतनी कोई भीड़ नहीं है, इतनी ट्रैफिक नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट आराम से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने उनको फोन किया बहुत नशे से, कहा भाई आप ईश्वर के घर जा रहे हो ना, तो ईश्वर आपका जरूर ख्याल रखेगा, मैं गारंटी करता हूं कि आपको जरूर वेट लिस्ट टिकट कन्फर्म हो जाएगी। और मैंने कहा अगर नहीं होगा तो आप मुझे फोन करना, ओके। एक दिन के बाद वो फोन करता माउंट आबू से, स्वामी भाई कमाल हो गया। मैंने कहा भाई क्या कमाल हुआ? बोला बाबा की वंडरफुल कमाल, देखो स्वामी भाई जो मेरी वेटिंग लिस्ट टिकट थी सेकंड क्लास के टिकट, सिर्फ कंफर्म नहीं हुआ, जब मैं वहां चार्ट देखा ईश्वर को याद करते हुए, बाबा की कमाल कि मुझे थ्री टायर एसी में बर्थ मिल गई। मैंने कहा और कहा बाबा की कमाल, अब किया किसने? इंडियन रेलवेज ने। और उसकी आस्था बैठ गई ईश्वर पर, है ना। तो देखो ईश्वर के भी आप पर कितनी आशीर्वाद कितनी दुआएं मिलेगी। तो भाई अपने लिए तालियां तो बजाइए रेलवे के लिए, है ना। यस, इट हैज बिकम अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉडल बिकॉज ऑफ दैट क्रिएटिव इनपुट, राइट। टेक द लीस्ट ट्रेवल्ड वे। फोर्थ जो है कौन सा हो सकता है? हम वॉकिंग से चले, धीरे धीरे साइकिल पर आए, बाइक पर आए। भाई नेक्स्ट किसमें यात्रा करना चाहोगे? किसमें? स्कूटर। छोटे बच्चे वेरी क्रिएटिव, अभी भी स्कूटर में ही हैं। ओके, और बताओ भाई, बाइक मिल गया आपको, उसके आगे क्या होगा? हाँ भाई हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, राइट राइट है। कार है ना। और कार कौन सा संबंध हो सकता है? चाइल्ड पेरेंट, स्टूडेंट टीचर, जॉब प्रोफेशन। कार कौन सा संबंध हो सकता है? वो है परिवार, फैमिली, राइट। क्योंकि सारा परिवार है ना, जब दो बच्चे हो जाते हैं तो है ना वाइफ भी कहती रहती है बस अभी बाइक में कितना चलाएंगे, प्लीज एक गाड़ी खरीद लो, एक गाड़ी खरीद लो। बिकॉज इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड कंसेप्ट, यू नो फैमिली। कहते हैं बहुत सुंदर स्लोगन, कहते हैं अ मैन ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ व्हाट ही नीड्स एंड रिटर्न्स होम टू फाइंड इट। हम सारे विश्व का चक्कर लगाते, खुशी आनंद जो चाहिए, लेकिन फाइनली उसको ये महसूसता होती है कि जो सारा जो स्नेह प्रेम जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं कहां पर है? अपने खुद के घर में। इसे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर कंसेप्ट बताते हैं, चैरिटी बिगिन्स एट होम। शुरुआत घर से होती है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। सेफ्टी रूल फॉर अ कार क्या होना चाहिए, फैमिली के लिए क्या सेफ्टी रूल होना चाहिए, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, वी कॉल इट एज द कार क्रैश कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज अ क्रैश, कार क्रैश कंपैटिबिलिटी? काफी बार जो कार होती ना उसको वो हिट कराते हैं, इंपैक्ट। और ऐसी कार जिसकी कार क्रैश कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी जो सारी इंपैक्ट एनर्जी होती है ना वो बॉडी अब्सॉर्ब करता है और पैसेंजर्स को बहुत कम ट्रांसफर होता है। और काफी बार ऐसी भी गाड़ी होती है जबरदस्ती उसको इंपैक्ट करा के देखेंगे, है ना, काफी बार डमी पैसेंजर्स को बिठाते, डमी ड्राइवर को, डमी पैसेंजर्स को, कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां हो रही है, और वहां पे वो एयरबैग्स प्रोवाइड करते हैं। इट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द कार क्रैश कंपैटिबिलिटी। और उसी तरह हमारे परिवार के संबंधों में अगर हमें सेफ्टी लेकर आनी है तो जिस तरह कार क्रैश कंपैटिबिलिटी है उसी तरह बहुत जरूरी है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इमोशंस। और हम हमेशा कहते हैं अगर एक परिवार में इमोशन स्टेबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। जो परिवार साथ में भोजन करता है वो हमेशा, है ना, जीवन के अंत समय तक उनमें वो इमोशनल बॉन्डिंग, वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होगी। और काफी बार जहां तक परिवार का सवाल होता है, आजकल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड रेट जो हो रहे हैं, आत्महत्या के केसेस जो बच्चे कर रहे हैं, उसके लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो हम टीचर्स और दूसरा पेरेंट्स, राइट। जैसे ही बेटा रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, मम्मी रिपोर्ट कार्ड देखती है, अभी तेरे को 80 मार्क्स मिला है, अभी शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, अनीता को कितना मिला। और जैसे हमने डायलॉग किया, इट इज अ कंपैरिजन। बच्चा एक गाड़ी खरीदता है मारुति 800, इमीडिएटली वो दूसरा देखता है नो नाउ आई वांट टू बाय दिस कार, क्योंकि वो संस्कार डेवलप हो रहे कंपैरिजन के, है ना। तो दोस्तों अगर हमें ये बच्चों की सुरक्षा, इस बच्चों की सेफ्टी अगर हम चाहते हैं तो हम आपका सहयोग लेना चाहेंगे। आप सभी हमको सहयोग देंगे, हाँ या ना? हाँ। और एक डायलॉग मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको ये डायलॉग पसंद आएगा तो हम यहां रिपीट करेंगे, और जब आप घर वापस जाएंगे तो ये अपने बच्चों के साथ ये डायलॉग जरूर शेयर करना, और वो डायलॉग पहले सुनना, अगर पसंद आए तो अपने बच्चों के साथ शेयर करना। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप बच्चों से मिलेंगे तो आप कहना, आप जो हो जैसे हो मेरे अपने राजा बच्चा हो। कैसा लगा डायलॉग, है ना? हाँ भाई तालियां तो बजाओ। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि, है ना, अपने घर पहुंचने तक भूल ना जाए। बोलो बोलो, सभी बोलिए, आप जो हो कैसे बच्चे हो, राजा बच्चे हो। अरे बहुत अच्छे, नहीं भाई राजा बच्चे हो, है ना। जब ईश्वर अपने लिए हमारे में इतने अवगुण होकर भी कहता है आप राजा बच्चे हो, तो क्या हम अपने बच्चों को ये डायलॉग नहीं कह सकते? काफी बार लोग कहते हैं स्वामी भाई ये फिल्मी डायलॉग ना बोलने में बहुत कठिन होता है। अरे बाबा हम सभी एक्टर्स हैं, भले वो फिल्मी डायलॉग लगा लेकिन फिल्मी डायलॉग की तरह बोल दो। आप विश्वास करो या नहीं करो, इट्स अ टेरिफिक सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर योर चाइल्ड। कुछ समय के बाद जब लड़का बड़ा होता है ना, स्कूल कॉलेज में जाता है, प्रोफेशन में चला जाता है, बहुत धन आ जाता है, अगर वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते में जा रहा ना, तो आपकी जो इमोशनल स्टेटमेंट है, आपका ये जो वाक्य है, उसको वापस खींचेगा। इसलिए ये इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर वन इज कार क्रैश कंपैटिबिलिटी, और नंबर टू जो है जिसको हम कहते हैं एंटी एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एक बहुत सुंदर सिस्टम है जो 1970 में मर्सिडीज बेंज ने इंट्रोड्यूस किया। खुशी की बात है आज इंडिया के कार्स भी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम? देखिए जब एक गाड़ी बहुत स्पीड पे जाती है और अचानक हमारे सामने कोई एक दूसरी गाड़ी या कुछ होता है, तो एक नेचुरल इंपल्स होता है कि हम गाड़ी को बहुत जोर से ब्रेक लगाए। करते हैं कि नहीं? यस, ये नेचुरल इंपल्स है। लेकिन अगर हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाया और अचानक अगर गाड़ी की व्हील्स बंद हो गई, स्टॉप हो गई, लेकिन गाड़ी में तो ऑलरेडी वो मोमेंटम है, उसके कारण क्या होता है, गाड़ी बहुत जोर से स्किड करती है, और जब स्किड करती है तो आजू बाजू के जो गाड़ी है उसको हिट करती है, और काफी बार रेलिंग्स को हिट करके ब्रिज के नीचे भी आ जाती है, अपने साथ दूसरों को भी लेकर जाती है, क्योंकि जो टायर्स हैं उसमें स्टॉप आ गया लेकिन गाड़ी में तो वो मोमेंटम है। इसे एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म मर्सिडीज बेंज ने इंट्रोड्यूस किया, विच इज कॉल्ड एंटी ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप इस गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपने ब्रेक किया, तो ऐसी मैकेनिज्म है जो आपके ब्रेक को लॉक नहीं करती है, वो एक्सलेट डी एक्सलेट, एक्सलेट डी एक्सलेट करते हुए फिर वो स्टीयरिंग देती करती है, तो इसके कारण जो स्किडिंग का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैकेनिज्म विच वी कॉल इट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, राइट। जिस तरह गाड़ी में ये बहुत बहुत जरूरत है, उसी तरह ये एबीएस हमारे संबंधों में विशेष तौर पर परिवार के लिए बहुत जरूरत है, और वो एबीएस हम कहते हैं एंगर ब्रेकिंग सिस्टम। जब भी कोई गुस्सा आता ना, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट भाई बहन है, इमीडिएटली ब्रेक दबा देते हैं, नो कम्युनिकेशन, सारा ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन। और अगर ऐसा हुआ, विश्वास करो या नहीं करो, कब हमारी जीवन रूपी गाड़ी जो है, परिवार रूपी गाड़ी स्किड हो जाए, और पता चले या नहीं चले, कहीं ना कहीं काफी बार गिर भी जाती है। इसे कहते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, मोर देन 50% ऑफ द मैरिड कपल्स हैव आइदर सेपरेटेड और आर प्लानिंग टू सेपरेट। ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता हूं, अपनी भारत की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप वापस जाएं तो अपने परिवार में ये एबीएस को इंट्रोड्यूस करिए और फिर स्टैटिस्टिक्स को देखना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कीप द कम्युनिकेशन ओपन। मुझे याद है पिछले महीने में गया था ये साउथ के टूर पर, और एक कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मुझसे कहा, स्वामी भाई आप साउथ के रहने वाले हो, जब आप घर जा रहे हो अपने पापा से मिलने के लिए, तो हमारे लिए भी थोड़ा सेवा करना, वहां के सारे जो ऑफिसर्स है, जो साउथ के ऑफिस, उसको आप कवर करना। मैंने कहा जरूर करूंगा। टॉपिक क्या है? बोला सर उनको बहुत स्ट्रेस है क्योंकि वो 24 घंटा काम करते हैं, कॉन्क्रीट बनाते हैं बैचिंग प्लांट में, और बना बनाए कॉन्क्रीट को उनको साइट में ट्रांसपोर्ट करना, काफी लॉजिस्टिक्स, काफी प्लानिंग की जरूरत है। मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। और जब सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के बाद जो मुझे फीडबैक मिला, जब मैं मुंबई आया तो वो हेड ऑफिस ने मुझे पूछा, आपका फीडबैक क्या है? मैंने कहा देखो फीडबैक तो आपको भी मिला होगा, लेक्चर बहुत अच्छा है। मैंने कहा लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने बस एम्प्लॉयज के साथ बातें की, लेकिन अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो अगली बार जब मैं जाऊंगा तो उनके साथ, उनके परिवार के साथ मैं गेट टुगेदर करना चाहता हूं और सभी को साथ मिलकर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। मैंने कहा मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक ये है कि जो रीजनल मैनेजर जो होता है वो 6-7 बजे जब वापस घर पहुंचता है, उसकी वाइफ बच्चे सभी इंतजार कर रहे हैं। जब वो घर पहुंचता है हर आधे घंटे में उसको फोन आता है, मिस्टर अय्यर का फोन आएगा, मिस्टर नायर का फोन आएगा, मिस्टर जॉर्ज का फोन आएगा। और ये वाइफ इतना इरिटेट होती है कि भाई घर आकर भी आप ऑफिस का काम कर रहे हो। लेकिन अगर एक फैमिली गेट टुगेदर हुआ और अगर रीजनल मैनेजर के वाइफ को भी बुलाया गया, मिस्टर अय्यर, मिस्टर नायर, मिस्टर जॉर्ज के परिवार को भी बुलाया गया, जब एक साथ, जब उनके बीच में वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते, इंट्रोड्यूस करते हैं, जब वो देखेंगे अरे मिस्टर अय्यर, मिस्टर नायर, मिस्टर जॉर्ज का भी अपना परिवार है, उनके भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो रात रात बैठकर वो साइट में काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन बिकम्स मच बेटर। और अगली बार मिस्टर नायर का फोन आएगा तो रीजनल मैनेजर की वाइफ का इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना पहले आता था। ओके मिस्टर नायर, जिनके दो छोटे बच्चे हैं, सी द कम्युनिकेशन हैज बिकम ओके। मुझे याद आता है कि पिछले हफ्ते मैं बॉम्बे के एक परिवार में गया था, जो हस्बैंड जो थे ना मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो काफी बार बुला रहे थे। तो जब मैं जिस दिन अचानक गया, कोई इंटीमेशन नहीं था, मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने कहा ओम शांति करके आता हूं, है ना। और हम बीके की बहुत सुंदर विशेषता होती है ना, किसी का भी दोस्त बन गए, बाप रे हमेशा ओम शांति, भाई जी मधुबन कब जाओगे, माउंट आबू कब जाओगे, बोलते रहते। आप 1000 बार हमें रिजेक्ट कर दो, लेकिन हमारे बीकेस में इतनी धीरज होती है वो 100 बार भी आपके पास आएंगे ना। तो मेरे भी अच्छे संस्कार थे, मैं भी पहुंच गया, भाई जी बहुत दिनों से बोल रहे हो हमारा कॉन्फ्रेंस से, आप कब आओगे। तो जैसे ही मैं गया मैंने रियलाइज किया कि घर में बहुत ना तनाव का अनुभव था, और वो हमारे जो मित्र थे बोला स्वामी भाई आ जाओ आ जाओ, आप ही की जरूरत थी, थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है। मैंने कहा बात क्या है। तो उसका लड़का भी बैठा था जिसका नाम था अजय, और उसकी मम्मी भी बैठी थी। बोला देखो ना अजय बिल्कुल मानता नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। अ वेरी यंग हैंडसम मैन, 24-25, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काम कर रहा है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। बोला भाई सिंपल प्रॉब्लम है, दिस बॉय वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, लेकिन उसको जो लड़की पसंद आती है वो माँ को पसंद नहीं आती, माँ जिसको सेलेक्ट करती है अजय रिजेक्ट कर देता है। टेरिफिक प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू। और मैंने देखा बोला ये 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, अभी सिचुएशन ये हो गई कि टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है ना। अजय मम्मी से बात नहीं करता, माँ अजय से बात नहीं करती, और मुझे यूनाइटेड नेशंस का रोल अदा करना पड़ता है, और यूनाइटेड नेशंस का तो आजकल कोई सुनता नहीं है, सभी अपनी मनमानी करते हैं। आप एक अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आए हो, आप थोड़ा ट्राई करो। तो मैं हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहा अरे अजय नथिंग टू वरी यार, यू आर अ वेरी यंग हैंडसम मैन। और सच्ची बात बताओ अजय, ये तो घर घर की कहानी है, सभी घर में ये चल रहा है। अच्छा अंकल ये सभी जगह चल रहा है। मैंने कहा हाँ, और मैं आपको बताता हूं कि ये, और मैंने अचानक मुझे हमारे जो नितिन भाई गीत गाने वाले हैं ना, तो उनकी एक बहुत सुंदर जोक मुझे याद आई। और मैंने कहा आपने वो नितिन भाई का जोक नहीं सुना। बोला सुन भाई कौन सा जोक। मैंने कहा भाई वो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो आपकी सिचुएशन है ना वो राहुल गांधी और मैडम सोनिया जी के साथ भी हो रहा है। बोला अच्छा कैसे हो रहा है। तो बोला ये बात वंडरफुल है कि राहुल गांधी मैडम सोनिया जी के पास जाते और कहते हैं मम्मी आपके कारण मेरा शादी नहीं हो रहा है। मैडम सोनिया जी कहते भाई मैं कैसे जिम्मेवार हूं। बोला मम्मी यू आर रिस्पॉन्सिबल, मेरी शादी नहीं हो रही। फिर मैडम सोनिया जी कहते प्लीज बेटा बताइए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं। बोला कैसे ना आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे देश में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़े मोटे अक्षर में लिखते हो सोनिया को बहू मत दो, सोनिया को बहू मत दो। अब भाई करेक्ट, अब इतने बड़े बड़े बोर्डिंग अगर रखोगे है ना, कौन पिता अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कराएगा है ना। और जब मैंने कहा, जब अजय और उसकी मम्मी ने इसका मीनिंग सुना तो इतना जोर से हंसे, इतना जोर से हंसे, एंड ऑटोमेटिकली देयर वाज अ ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन। तो कभी कोई स्ट्रेस हो, एंगर हो, तो प्लीज वी ऑट टू बी ह्यूमरस एंड ऑलवेज कीप द कम्युनिकेशन लिंक ओपन। कभी भी रिलेशनशिप को लॉक नहीं लगाओ, इट शुड कंटिन्यू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कार हो गया, हम चल रहे थे वॉकिंग के बाद, धीरे साइकिल में आए, बाइक में आए, कार, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए। नहीं बस कार तो एक ही है भाई, चार पहियों वाला, आगे बताइए ना है? कौन सा। देखो भाई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, देखो राइट आंसर है कि नहीं, कंप्यूटर बताओ राइट आंसर है हमारे बच्चों का, राइट होगा तो तालियां बजाना। हाँ भाई राइट, एकदम राइट आंसर, तालियां बजाइए। वॉकिंग में चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, बाइसिकल में स्टूडेंट टीचर रिलेशन, ओके बाइक में यस जॉब प्रोफेशन रिलेशन, कार में फैमिली रिलेशन, ट्रेन में कौन सा रिलेशन हो सकता है। हाँ जी ट्रेन में कौन सा रिलेशन करते हैं? हाँ जी, हाँ मतलब रिलेशन कौन सा होता है? वाह, ट्रेन में हमारे लोग ज्ञान का चर्चा भी करते हैं, वेरी इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअल पीपल है। भाई रिलेशन कौन सा होता है? कौन सा होता है? सोशल रिलेशन। भाई माताएं बहुत इंटेलिजेंट है, एब्सोल्युटली राइट। फ्रेंड्स है ना, ट्रेन में बैठकर इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स सोसाइटी, ट्रेन में ही दोस्ती होती है ना, और सारा शेयर होता है, राइट। कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, मेनी पीपल विल ड्राइव इन एंड आउट ऑफ अ लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन आवर हार्ट। हमारे जीवन में बहुत लोग आते हैं जाते हैं सफर में, लेकिन कुछ एक अच्छे दोस्त होते हैं जो हमारे दिल में एक अमिट छाप छोड़ देते। ट्रेन में कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए? जब हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सी सेफ्टी होनी चाहिए, इस बात को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेन के लिए सेफ्टी है, विच वी कॉल इट एज अ कोर सेफ्टी जोन, कोर सेफ्टी जोन। और ये जो कोर सेफ्टी जोन जोन का जो कंसेप्ट है, ये फॉरेन कंट्रीज में प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कोर सेफ्टी जोन? देखिए, एक दिन में रेलवे में कितने लोग यात्रा करते हैं, मे बी क्रोज एंड क्रोज ऑफ पीपल, राइट। और काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो अचानक चेस्ट पेन का अनुभव करते हैं, उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है। तो फॉरेन में उन्होंने एक बहुत सुंदर सिस्टम आरंभ किया, विच इज कॉल्ड एज अ कोर सेफ्टी जोन, जहां पे हर एक रेलवे कंपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशन में उन्होंने पहले से फिक्स किया है अ कोर सेफ्टी जोन। जब भी किसी पैसेंजर को हेल्प की जरूरत होती है, तो दूसरे पैसेंजर्स क्या करते हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, जो व्यक्ति जिसको हेल्प चाहिए उसको इमीडिएटली पकड़कर कोर सेफ्टी जोन में लेकर जाते हैं। और कोर सेफ्टी जोन में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे पुलिस की फैसिलिटी अवेलेबल है ना, फोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, डॉक्टर्स वहां पे मौजूद होंगे, आपको सारे कम्युनिकेशन, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स, फर्स्ट एड मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वहां सोशल वर्कर होंगे जो इमीडिएटली आपका ब्लड का अरेंज करने की कोशिश करेंगे। बस सिंपल है, आप उस कोर सेफ्टी जोन में जाओ और सुरक्षित हो जाओ। तो जिस तरह रेलवेज में एक कोर सेफ्टी जोन की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेटवर्किंग ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोग। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली अगर हमारे अच्छे दोस्त होंगे तो हम भाग दौड़कर उन तक जरूर जरूर पहुंच सकते हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक एक कोर सेफ्टी जोन का सवाल है, नेटवर्किंग की बात आती है, वी रियली अप्रिशिएट द इंडियन रेलवेज, वी रियली अप्रिशिएट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो दो लॉजिस्टिक हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत सुंदर नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं। आज दोपहर को मैं हमारे आदरणीय अशोक गाबा जी भाई साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, जो हमारे सिक्योरिटी विंग के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और जिस तरह आप ट्रांसपोर्ट विंग में आए, उसी तरह भाई साहब जो हैं वो डिफेंस सिक्योरिटी विंग को सारा संभालते हैं। और हर वर्ष यहां पर है ना, ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग आते हैं और इस प्रकार के लेक्चर सुनते हैं। तो दोपहर को भाई साहब के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा था और वो कह रहे थे कि अभी हमें एक बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला है, दैट इज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग जस्ट लॉजिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे कि वहां पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट जानी चाहिए या ट्रेन में जाना चाहिए, रोड में जाना चाहिए। तो भाई साहब मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे कहे, उन्होंने कहा वी ऑट टू बी ग्रेटफुल टू द इंडियन रेलवेज एंड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नजदीक इतनी हाई अल्टीट्यूड में भी उन्होंने रेलवे का प्रबंध किया है, रोड्स का प्रबंध किया है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, हमारे मिलिट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स काफी साउथ से आना जाना होता है, तो वहां पे हर एक को फ्लाइट में पहुंचा नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा स्वामी भाई अगर हो सके ना तो वहां पर आप ट्रेन में यात्रा करना, इतने ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाए हैं, आप साइड में देखो तो खाए, राइट में देखो तो खाए, लेकिन वहां पे भी उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं। मैं इस तरफ सिक्किम की तरफ गया था, इंडो चाइना बॉर्डर में, वहां तो रेलवे वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 14,000 feet अप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वहां तक भी इतनी अच्छी रोड्स बनाए हैं। तो सारे देश की सुरक्षा और हम सभी भाई बहनों की सुरक्षा जो इंडियन रेलवेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटवर्किंग ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर रहा है, उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, तालियां जरूर बजाइए। नेटवर्किंग ऑफ गुड पीपल। और इसलिए ये विद्यालय में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग लग जाएगा। तो किस प्रकार का संग होना चाहिए? सत्संग करो, सत्य के संग में रहो। और इस संसार में सिर्फ एक सत्य है, कौन सा सत्य है? सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा। शिव अर्थात कल्याणकारी। और क्योंकि सदैव वो अपने बच्चों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए उनको सदा शिव कहा जाता है। जब 10-12 वर्ष पहले जब मैं पहले बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आया ना, तो उसकी वहां पे एक बहन जी ने एक बहुत सुंदर मुझे कहानी सुनाया। वो कहानी मुझे इतनी दिल को टच हो गई कि मैंने कहा भाई ये विद्यालय में हमेशा संपर्क में रहना है। महाभारत के युद्ध में बताते हैं, क्योंकि इट इज ऑल कनेक्टेड विद युद्ध। जब अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना था, और अगर अर्जुन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं करेगा तो वो अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा। एक दिन पहले शाम के वक्त में है ना, श्री कृष्ण जो थे स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि भाई अर्जुन को चक्रव्यूह में वेद करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन को बहुत तनाव होगा, शायद उसको मेरे संग की जरूरत पड़ेगी, मैं जाकर उनको थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट करके आता हूं। और जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि अर्जुन अपने बेड में लेटा हुआ खर्राटे मार के सो रहा है। हाउ कैन अर्जुन स्लीप लाइक दिस? इमीडिएटली श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाता है, और जैसे अर्जुन उठता है तो देखता है सामने श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पूछता है, अर्जुन तेरे को पता है सूर्यास्त के पहले तेरे को जयद्रथ का वध करना है? बोले यस मुझे पता है। फिर तू ऐसे खर्राटे मार के सो कैसे सकता है? एंड ए वेरी क्लासिक रिप्लाई ऑफ अर्जुन, जब वो जवाब देता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। इफ गॉड इज अवेक फॉर मी, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी रादर देन स्नोर इन पीस ब्लिस एंड हार्मनी। इसलिए हम बीकेएस में ना ये कोर सेफ्टी जोन है, और जाते जाते मैं आपको ये बताता हूं, आप इस कोर सेफ्टी जोन का अनुभव करो। काफी बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, बहुत परिस्थिति आती है। कर्मों का अपना अपना गति है, हमने भी पिछले जन्म में पता नहीं कौन से कर्म की परिस्थिति आती है, लेकिन ये कोर सेफ्टी जोन का एड्रेस होने के कारण बस जैसे ही लगा परिस्थिति है मुझे शक्ति की जरूरत है, तो अगर हम माउंट आबू में है तो इमीडिएटली बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाएंगे, शांति साइलेंस। अगर घर में है तो इमीडिएटली अपनी गाड़ी निकालकर सीधे जाएंगे सेंटर में और वहां मेडिटेशन रूम में 10 मिनट बैठेंगे, बिकॉज दैट्स अ कोर सेफ्टी जोन। और विश्वास करो 12 वर्ष का अनुभव है कितना सुरक्षित हम महसूस करते हैं। सो प्लीज एक्सपीरियंस दिस कोर सेफ्टी जोन, है ना। आप यहां 2 दिन है तो बीच बीच में मेडिटेशन रूम में जाकर उसका अनुभव करो। और यहां पे भी जब बहनें मेडिटेशन कराते हैं, रेड लाइट करते हैं, तो एक्सपीरियंस दिस सेफ्टी जोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सिग्नल सिस्टम, राइट। एंड वी रियली अप्रिशिएट द इंडियन रेलवेज फॉर द टेरिफिक सिग्नल सिस्टम। काफी उन्होंने उस पर टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ह्यूमन एरर्स को काफी कम करने में मदद की है। आई जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पीपल फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइटिंग सिस्टम, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट्स, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ये सारे सिग्नल्स ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड होने के कारण बहुत बहुत सुरक्षित होते हैं। जिस तरह सेफ्टी मैकेनिज्म एज ए सिग्नल सिस्टम, उसी तरह ब्यूटिफुल लॉ इज देयर विच इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों से अगर हमें सुरक्षा करना है, गलत दोस्तों से, सो वी नीड टू अप्रिशिएट दिस लॉ विच इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसे अगर ये टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग टावर होती है ना, वो हमारे घर में पिक्चर्स देते हैं इन द टेलीविजन, लेकिन कैसे वो ट्रांसमिट करती है? थ्रू अ फ्रीक्वेंसी, और हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक पिक्चर होता है, अपना एक इमेज होता है। उसी तरह दोस्तों हमारे विचार और ऑल्सो थॉट्स आर मैग्नेटिक, और दीज थॉट्स हैव गॉट अ फ्रीक्वेंसी। जिस तरह के आपके विचार होंगे, जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस तरह आपके जीवन में ये पिक्चर्स आने लगेंगे। अगर आप विश्वास करके बैठते हो और अगर आप फ्रीक्वेंसी डिवाइस करते हो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे परिवार बहुत सुख और शांति है, 100% महसूस करिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेगा, विच वी कॉल इट एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन द थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, बट इन द थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, बट इन द फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड में पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो बहुत जरूरी है कि हमारे मन में वो पॉजिटिव संकल्प चले, और जितना आपका पॉजिटिव संकल्प, जितना आपका शुद्ध संकल्प, ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और दोस्तों मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आप विश्वास करो या नहीं करो, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, क्योंकि आपके शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वो परमात्मा जो पवित्रता का सागर है उसका मैच हो गया, इसलिए तो आज यहां पर पहुंच सके आप, नहीं तो आप लोग कैसे पहुंचते थे। इट इज मैचिंग। काफी बार जब हम लोगों को मधुबन के लिए बुलाते हैं ना, तो कहते हैं भगवान बुलाएगा तो आएंगे। कैसे आएंगे? एकदम थॉट फ्रीक्वेंसी शुड मैच। तो आपको खुशी होती है जानते हुए कि आपके संकल्प इतने शुद्ध इतने पवित्र हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें सुरक्षित रहना है तो एक सेफ्टी ऑर्डिनेंस जो परमात्मा ने कहा है और वो है अपने संबंधों को शुद्ध, संबंधों को पवित्र बनाओ। वी हैव टू मेक अ रिलेशनशिप वेरी वेरी प्योर। टीवी में न्यूज़पेपर में हम देखते रहते एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, वी आर ऑल सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। अगर सुरक्षित रहना है तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म है। ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं ना, इट्स अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। पिछले 70 वर्ष से परमात्मा जो पवित्रता का सागर है ये सेफ्टी ड्रिल करा रहा है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो महसूस करते कि आने वाला समय इतना खतरनाक समय होगा, अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वो पवित्रता, वो शुद्धता अपने संबंधों में लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज एक्सपीरियंस दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे काफी बार भाई बहन अनुभव करते हैं, जब हम ज्ञान सरोवर के कॉम्प्लेक्स में आते हैं वी आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट प्यूरिटी, वी आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट डिविनिटी, क्योंकि यहां का जो ब्रह्मचर्य है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपने परिवार में रहते हुए है ना कमल फूल समान पवित्र रहे, उसी तरह हमें भी अपने परिवार में रहते हुए अपने जीवन को कमल फूल समान पवित्र बनाना बहुत बहुत जरूरी है। एनीवे आपकी फ्रीक्वेंसी तो मैच हो गई है, बस उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करिए एंड यू विल सी वंडर्स इन योर लाइफ। अच्छा, वॉकिंग से चले, धीरे धीरे साइकिल में आए, बाइक में आए, कार में, फिर ट्रेन में, नेक्स्ट किस में चढ़ना पसंद करेंगे? एरोप्लेन में। वेरी गुड भाई, चलो भाई आप बोलते हो तो एरोप्लेन लेकर जाते हैं आपको। एरोप्लेन, यस। और जब एरोप्लेन जब आते हैं ना तो उसमें कौन से संबंध होते हैं, कौन से संबंध? देखिए ट्रेन में जब चलते हैं ना तो आपस में बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन अक्सर जब एरोप्लेन में बैठते हैं ना, यूजली देखा गया किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यू आर इन अ हायर एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे आप ऊपर उड़ान करते हो ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आपको छोटी छोटी दिखाई देती है, राइट? एंड यू आर एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन मच फास्टर। आप अपने मंजिल बहुत जल्दी पहुंच जाते हो और आप साइलेंस का अनुभव करेंगे, म्यूजिक का अनुभव करेंगे। तो एक संबंध है और वो है स्वयं का संबंध, सेल्फ, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत अच्छा स्लोगन मुझे मिला जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ एनी पर्सन इज द जर्नी इनवर्ड्स। सबसे वंडरफुल यात्रा है, जो सबसे बड़ी यात्रा है, और वो है आंतरिक यात्रा। मुझे थोड़े, मेरे पास थोड़ी स्टैटिस्टिक्स है। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB कहता है, हमको अक्सर प्लेन में जाने के लिए थोड़ा डर लगता है, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं, लेकिन वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स NTSB कहता है। और हमारे वंडरफुल फ्रेंड मिस्टर चंद्रकांत फ्रॉम पुणे ने ये बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स बताई है। उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट अगर होना है तो इट शुड बी लैक्स, वन इन लैक्स, लैक्स में रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन एक्सीडेंट है वन इन थाउजेंड्स, लेकिन अगर प्लेन में अगर एक्सीडेंट होना है वन इन हंड्रेड। तो देखो लैक, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड। NTSB ने 1996 में एक बहुत सुंदर उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया था कि अगर आप 24 घंटे प्लेन की यात्रा कर रहे हो 400 साल तक, 400 इयर्स, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल मेट विद एन प्लेन एक्सीडेंट। कितनी सुरक्षा का मैकेनिज्म वो इन्वॉल्व करते हैं, राइट? और भले अगर एक प्लेन एक्सीडेंट भी क्यों ना हो, पूरी तरह खत्म क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत सुंदर सेफ्टी डिवाइस प्लेन के अंदर सुरक्षित रहता है, जो हमें आगे के लिए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के लिए संकेत देता है। अब बता सकते हैं वो सेफ्टी डिवाइस कौन सा 100% सुरक्षित रहेगा? भाई देखते हैं कि आपका आंसर राइट है कि नहीं। यस भाई, तालियां तो बजाइए इनके लिए, है ना, एब्सोल्युटली राइट। ब्लैक बॉक्स, ये संपूर्ण तरीके से सुरक्षित रहता है क्योंकि इट्स अ हाई टेम्परेचर इंसुलेशन एल्यूमिनियम हाउसिंग विथ स्टेनलेस स्टील। एक्सट्रीम हीट, वायलेंट क्रैशेस, टन्स ऑफ प्रेशर भी अगर दे दें तो इसको कुछ नहीं होगा। ये ब्लैक बॉक्स को दूसरे नाम से भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बहुत सुंदर बात है कि ब्लैक बॉक्स से करीब हमें 100 पैरामीटर्स समझ में आने मिलता है। प्लेन की एल्टीट्यूड क्या थी, प्लेन का टाइमिंग क्या था, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, उसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा था, फ्लैप सेटिंग कैसी थी, पायलट्स को पायलट्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन था, मोर देन 100 पैरामीटर्स। और ये जो सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके फिर इंजीनियर साइंटिस्ट इस बात को महसूस करते कि आगे के लिए क्या सुरक्षा की जाए। जिस तरह एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स 100% सुरक्षित रहता है, उसी तरह अगर हम भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में हो जाएं, भले हमको कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक चीज जरूर जरूर सुरक्षित रहेगा, और वो क्या है? ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर, और वो है ये आत्मा, 100% सेफ एंड सिक्योर. और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग. ये आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग होती है. वैसे अक्सर हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन असल में इट इज ऑरेंज इन कलर. इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? ब्लैक बॉक्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अक्सर इतनी हीट हो जाती है कि काफी बार ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. अगर ये पूरी तरह ब्लैक में कन्वर्ट भी नहीं हुआ ना, तो जब भी हम कोई इमेज देखेंगे ऑफ अ प्लेन एक्सीडेंट, चारों तरफ काला ही काला होता है, क्योंकि वो कार प्लेन एक्सीडेंट हुई है और उसके बीच में ये दिखता नहीं है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स दे दिए गए. उसी तरह अगर हमारे इस आत्मा में अगर कोई एक्सीडेंट हो रही है, उसका एक कारण हो सकता है कि ये भी ब्लैक बन गई है. इतने विकार, इतने अवगुण, इसको भी शुद्ध और पवित्र बनाना बहुत जरूरी है. इसलिए विद्यालय का जो आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होती है स्वयं का परिचय. एक भाई या बहन अगर 40 वर्ष से भी इस विद्यालय में जुड़े हुएंगे, तो हर दिन ये ज्ञान दिया जाता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. ये रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि हम सुरक्षित रहें. और सेफ्टी के हिसाब से आज समाज में जो सबसे बड़ा डर या भय का कारण है, वो है मृत्यु का भय. मुझे याद है इंडियन एयरफोर्स में मैं एक लेक्चर ले रहा था, तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो कमांडर इन चीफ वॉज देयर विद मी. तो उन्होंने पूछा मुझसे, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले? मैंने कहा यस मुझे पता, देयर पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. बोला सर इसमें ऐसे भी बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 MiG-27 को उड़ाते हैं, आपको मालूम है उनको सबसे बड़े डर किस बात का हो सकता है? मैंने कहा भाई किस बात का डर? बोला द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि काफी बार ये MiG-21 MiG-27 को उड़ाते हैं, विच आर यूजली कॉल्ड एज फ्लाइंग कॉफिन्स. तो काफी मृत्यु का भय होता है. आप प्लीज इन पर, इस बात पर जरूर फोकस करना. मैंने कहा जरूर करूंगा. और जब मैं ऑडियंस को आत्मा का परिचय दे रहा था, तो मैंने सबसे पूछा भाई आज समाज में सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? सबने कहा मृत्यु का भय. एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. तो मैंने उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहा आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपके अपने परिवारजनों का, दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स, बच्चों का मृत्यु का भय होगा. एम आई राइट? तो सोचने लगा. उनकी वाइफ साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, हैव यू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस? मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश किए? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के मृत्यु का भय नहीं होता है, लेकिन फियर ऑफ क्लोज्ड वंस. लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता कि मैं आत्मा अजय अमर अविनाशी हूं, स्लोली वी स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से निकलने लगते, एंड वी फील सो सेफ, सो सिक्योर. सो आत्मा का ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है. नाउ फ्रेंड्स, वॉकिंग, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, वॉकिंग, नेक्स्ट क्या है? साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, एरोप्लेन. नहीं भाई वो जहाज है. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. व्हाट नेक्स्ट? तो सस्पेंस देखो. ईश्वर कहते हैं, गॉड सेज द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये क्या है? हाँ जहाज तो है, लेकिन इसको कहते हैं पुष्पक विमान, है ना. दिस इज द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसलिए भले हम विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन ये परमात्मा की क्रिएटिव एनर्जी है. जैसे ही राइट ब्रदर्स ने पंछियों को उड़ते हुए देखा ना, उनके मन में विचार आया कि एक दिन मनुष्य इस तरीके से उड़ सकता है. उनके दोस्तों ने कहा यू आर क्रैक, यू आर क्रेजी, भाई मनुष्य पंछियों की तरह कैसे उड़ सकता है? लेकिन राइट ब्रदर्स वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव, और आज हम उड़ने लगे हैं ना. इसे काफी बार जब हम कहते हैं हम पुष्पक विमान में उड़ेंगे, जो कैसी सुंदर होगी, जिसमें बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इतने ज्यादा कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, एक बहुत सुंदर दुनिया, वहां की प्रकृति इतनी सुंदर होगी, सदा बहार होगी, पुष्पक विमान होंगे, और वहां पे है ना देवी देवताओं का राज्य होगा, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा. एक ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है, जहां पर जिसको हम हिंदू फिलॉसफी में सत्युग कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, इस्लामिक फिलॉसफी में जन्नत कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, क्रिश्चियन फिलॉसफी में हम इसको गार्डन ऑफ इडेन, पैराडाइज, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन कहते हैं. एक ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है, और एक ऐसी सुंदर दुनिया की विशेषता क्या होगी? अ वर्ल्ड गवर्न्ड बाय टोटल सेफ्टी, संपूर्ण सुरक्षा, विथ हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्योर रिलेशनशिप, संपूर्ण पवित्र संबंध, सम्मान्य संबंध वहां पे होंगे। और विशेष ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने आपको यहां पर बुलाया, क्योंकि आप जो भाई बहन है ना, बहुत लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। इसलिए सच्ची बात बताएं, भगवान को आपकी जरूरत है। और प्लीज जब आप वापस जाएंगे तो लोगों को ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताना कि भगवान आकर ये कह रहे हैं कि ये दुनिया परिवर्तन होगी और बहुत सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है। और उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, एक सुंदर कहानी मैं बताता हूं और 5-10 मिनट में मैं एंड करूंगा। नितिन भाई जी को भी हम गीत सुनने के लिए तैयार हैं, है ना। तो एक बहुत सुंदर कहानी है, थाईलैंड में एक बार, है ना, एक लॉरी में एक मूर्ति को जो मिट्टी का बना हुआ था उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और कुछ डिवोटीज भक्तजन भी थे जो उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे थे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, अचानक बारिश आने लगी, तो उनको लगा कि अब ये मिट्टी का जो मूर्ति है धीरे धीरे पिघलने लगेगा, तो उसके ऊपर वो काफी, है ना, कुछ सुरक्षा का प्रबंध करने लगे। लेकिन इतनी जोर से बारिश और तूफान आ गई कि जो सारे भक्तगण जन ने देखा कि धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगी है। तो सारे जो डिवोटीज थे वो बैठकर ईश्वर को प्रार्थना करने लगे कि प्लीज ईश्वर इस मूर्ति को संभाल लो, इसकी सुरक्षा करो। और कुछ समय के बाद जब ये भक्तजन ने अपनी आंखें खोली तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको देखकर कि जिन्होंने वो मिट्टी का मूर्ति समझा था उसके सामने एक सोने की, एक डायमंड की बहुत सुंदर मूर्ति। फिर उनको बाद में पता चला कि एक्चुअली मूर्ति वो सोने और डायमंड की थी, लेकिन उसके ऊपर, है ना, वो मिट्टी का कैमोफ्लेज किया गया था ताकि चोरों की नजर उन पर नहीं जाए और वो जो मूर्ति है वो संपूर्ण सुरक्षा तक, अपने मंजिल तक पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने ये किया था। उसी तरह दोस्तों, है ना, ये जो देह है ना, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो जब आप यहां से वापस जाएंगे तो हर दिन आप सेंटर पर जाकर वो ईश्वर परमात्मा से ज्ञान की वर्षा का अनुभव करिए, और धीरे धीरे ये जो देह के संस्कार हैं, देह अभिमान है ना, देह के जो सारे जो नेगेटिविटीज हैं वो धुलने लगेंगे, और कुछ समय के बाद आप आत्मा जो सोना और डायमंड की तरह चमकने लगेगी। और ये प्रकाश सिर्फ आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन सारे विश्व तक ये प्रकाश जरूर जरूर पहुंचेगा। ऐसी शुभ भावना इस विद्यालय की और बाबा के आपके प्रति है। लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर सेफ्टी। बाबा कहते हैं, बाबा मीन्स शिव बाबा कहते हैं, हमेशा मेरी याद की यात्रा में रहो, हमेशा मेरी याद की यात्रा में रहो। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती। इनायत मतलब मेहरबानी। अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। आप दूर भी चले जाएंगे ना, लेकिन आपका और बाबा का रिश्तों की महक कम नहीं होगी। रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। अगर जीवन में हो साथ सच्चे रिश्तों का, परमात्मा से सच्चा रिश्ता हो गया ना, है ना, तो अगर जीवन में हो साथ सच्चे रिश्तों का तो जिंदगी भी कोई जन्नत से कम नहीं होती, तो जिंदगी भी जन्नत से कोई कम नहीं होती। तो लास्ट में मैं आपको एक ही बात बताकर एंड करूंगा कि बस दोस्तों, सुरक्षा के लिए एक ही बात का ख्याल रखना, सुबह उठकर उस बाबा को गुड मॉर्निंग करना, है ना, जब आप भोजन करते हो वो ईश्वर की याद में भोजन करना, और सोने के पहले एक सेकेंड वो ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना कि आप संपूर्ण सुरक्षा में हो। और अगर आपको लगता है कि स्वामी भाई क्यों हम भगवान का धन्यवाद करें, तो एक लास्ट प्रेजेंटेशन बताकर मैं एंड करना चाहूंगा। ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफी बार ये एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के दिन मिनिमम 10 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हर एक न्यूज़पेपर समाचार पत्र में राशिफल पढ़ते हैं कि भाई एक तो राशिफल कहेगा कि तू पास हो जाएगा, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ईश्वर को क्यों धन्यवाद देना है, शायद ये जो स्लाइड है मुझे बहुत इंस्पायर करता है। निक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हुए हमारी इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बचपन से इनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाथ भी नहीं पैर भी नहीं। उनके जो दूसरे भाई बहने थे, दे परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन निक के साथ ऐसे क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं. इट इज जस्ट कॉल्ड एज अ बर्थ डिफेक्ट, मेडिकल डिफेक्ट. निक उस स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन रूल कहता है कि जो अपाहिज बच्चे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते, इसको एडमिशन नहीं मिली. लेकिन इनके मम्मी डैडी ने वही डायलॉग बोला जो मैं आपको कुछ समय पहले अपने बच्चों के साथ कहने को कहा था. कौन सा डायलॉग है? आप जो हो जैसे हो मेरे अपने राजा बच्चा हो. बस अंतर यह था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन भाषा में बोला, आप उसको हिंदी भाषा में बोलेंगे, बस यही अंतर था. आप जो हो जैसे हो मेरे राजा बच्चा हो. और निक के पेरेंट्स ने ऑस्ट्रेलियन रूल के अगेंस्ट में केस फाइल की एंड दे वन द केस. केस जीत गए, निक को एडमिशन मिल गई. पहला दिन जब निक स्कूल में गया तो सारे जो बच्चे थे प्रोटेस्ट धरना पर बैठ गए, हमें निक के साथ नहीं पढ़ना है क्योंकि निक पूरी तरह अपाहिज है. लेकिन निक ने वही कहा जो संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, दिल से दिल की भाषा. और इसका रिजल्ट क्या था? देखो वो बच्चे निक के इतने अच्छे दोस्त बन गए, यहां तक कि निक के साथ खेलने लगे. हम निक के चेहरे में मुस्कुराहट देख सकते हैं. निक दूसरे अपाहिज बच्चों से मिलना चाहता है, उनको मोटिवेट करना चाहता है. और मैंने निक के साथ एक बात सीखी, नेवर टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड. जब तक सुरक्षा है तब तक जितना हो सके ईश्वर के कार्य में अपने आप को तन मन धन से अर्पण कर दो. निक इज अ मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर. वो मोटिवेट करते हैं. और एक बात निक की मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द बेस्ट फॉर दोज हु लव हिम. अगर हम ईश्वर के साथ सच्चा स्नेह करेंगे तो ईश्वर जरूर वो रिटर्न हमको करेगा. आई कंप्लीट पीस नोइंग दैट गॉड वॉन्ट लेट एनीथिंग हैपन टू अस इन आर लाइफ अनलेस ही हैज अ गुड पर्पस. जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है. गीता में बहुत सुंदर फिलॉसफी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं अपने लौकिक पापा से ये सीखा हूं, है ना. 6 महीने पहले अच्छी तरह एक्सीडेंट हो गया और अभी लेटे हैं और अभी 6 पैर से चल रहे हैं ना. और पापा से पूछे तो ये ज्ञान का इतना वंडरफुल हुआ, जैसे मैं पहली बार पापा से मिला हॉस्पिटल में, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा याद है मुझसे पूछ रहे. मैंने कहा हाँ मुझे तो याद है, आपको याद है? बोला वो मेरा सुप्रीम सर्जन है. थोड़ी देर के बाद कहते हैं स्वामी भाई, मुझे भी स्वामी भाई बुलाते. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा. पहले आप लोग इतने बिजी होते थे कि मेरे लिए टाइम नहीं मिलता था, अभी आप लोग बार बार मेरे पास आएंगे, ये भी अच्छा हुआ. सी द वंडरफुल साइकोलॉजी. मैंने भी कहा वाह मेरे बाप वाह, जैसे वो सुप्रीम बाप मेरा बाप भी वंडरफुल निकला, है ना. निक को बच्चे बहुत बहुत पसंद आते हैं. आई नाउ सी ग्लोरी रिवील्ड एज ही इज यूजिंग मी जस्ट द वे आई एम. हम एक निमित्त हैं, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स. हम अपने आप को समर्पण करें ईश्वर को. मालूम है कौन सी विशेषता कैसे कब कहां लगानी है, बस सरेंडर योरसेल्फ. 21 इयर्स के हैं निक, बैचलर ऑफ कॉमर्स मेजरिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग. स्पीकर हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में. किसको मोटिवेट करते हैं? मुझ और आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं. ही हैज गॉट अ पैशन फॉर रीचिंग आउट टू यूथ. बहुत ट्रैवल करते हैं, युवा पीढ़ी को बहुत मोटिवेट करते हैं. उनके भी बहुत सपने हैं, बहुत मंजिल है. और बहुत जल्दी निक एक किताब लिखने वाला है. लास्ट स्टेटमेंट, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज. हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, इससे चिंताएं भी नहीं है. वाह वंडरफुल, है ना. निक लव्स फोटोग्राफी और निक लव्स टू डांस ऑल्सो. अगर निक जिनके हाथ और पैर नहीं है अगर वो डांस कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हर पल हर क्षण हमें डांस करना चाहिए, है ना. जब अच्छे संबंध होते हैं ना तो पार्टी मनाते हैं. हमारे यहां पे भी पार्टी हम करते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल पार्टी. और यहां पर हम भी डांस करते हैं. सभी डांस करेंगे, है ना. सभी स्ट्रेट बैठ जाओ, थोड़ा डांस करके हम नितिन भाई को इनवाइट करेंगे, है ना. भाई हमारे नितिन भाई जी आ जाइए सामने, है ना. भाई तालियां बजाकर उनका स्वागत करें. तो हमें गीत गाना नहीं आता, लेकिन हमें डांस करना बहुत अच्छा आता है. अरे भाई निक जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, अगर वो डांस कर सकते हैं तो हमें तो डांस करना चाहिए ना. एक बहुत सुंदर डांस है. और राज्यों की फर्स्ट स्टेट यही है, मेडिटेशन में जो अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है, अगर हम उसको अनुभव कर सकते हैं, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन इज सो मार्वेलस. तो ये जो डांस है मैंने हमारे आदरणीय भ्राता जी डॉक्टर गिरीश पटेल जी से सीखा है. डॉक्टर गिरीश पटेल के लिए भी तालियां बजाइए. हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं. पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मैं भी बहुत खुश हुआ. इट इज कॉल्ड एज अ पीकॉक डांस. जब बारिश गिरती है ना तो मयूर इतना खुश होता है कि वो डांस करता है. कैसे डांस करता है? लाइक दिस, है ना. तो आपको डांस भी करना है और आपको एक स्टेटमेंट कहना है. शायद आपके मॉर्निंग सेशन में आप लोगों ने किया भी होगा, है ना. और क्या कहना है? वाह ईश्वर वाह, राइट. हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, हमारे निकट के संबंधी दोस्त जॉब में, हाय हाउ आर यू, हाय हाय नहीं बोलो प्लीज. हाय मेरी किस्मत फूट गई, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरे हस्बैंड. इट्स एक्चुअली वेरी नेगेटिव वर्ड. हाय को चेंज करो,
वाह वाह करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इससे दो फायदे होते, एक तो इट्स अ वेरी पावरफुल ऑटो सजेशन, और दूसरा जब आप ऐसे करते हो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स। तो जब मैं बोलूंगा उसको आप रिपीट करना, सभी करेंगे? चलो हियर वी स्टार्ट। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा अलौकिक जन्मदिन वाह, वाह मेरा बेहद का परिवार वाह, वाह मेरे राजा बच्चे वाह, वाह मेरे पति पत्नी वाह। अब जो हैं जैसे हैं सहन तो करना पड़ेगा ना, तो खुशी खुशी सहन करें ना, है ना। अच्छा, वाह मेरे बॉस वाह। एक और बार इतनी जोर से बोलो कि आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक मैच हो जाए, और जब आप वहां जाए ना तो उनको गुस्सा नहीं आए, तीन दिन घूम के आए, है ना। जब वो जाए आप जाए तो इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी, आपको मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे, हो सके तो पुष्प गुच्छा भी दे रहे। इतनी जोर से कहो वाह हमारे बॉस वाह, वाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाह, वाह ये दिन वाह, वाह ईश्वर वाह, वाह वाह वाह। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। अब हम नितिन भाई जी को अनुरोध करेंगे कि आप आइए और एक ऐसा सुंदर गीत गाइए ताकि हम लोग बस मन ही मन वो मंत्र जपते रहे, वाह वाह बाबा वाह, और वाह बाबा के नितिन भाई वाह। चलो आपके लिए
सभी बोलिए वाह स्वामीनाथन भाई वाह। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। भाग्य की लकीर खींच ली अपने ही हाथों से, ओ हो अपने ही हाथों से। युगों के गम हर लिए अपनी मीठी बातों से, ओ हो अपनी मीठी बातों से। दिल की बात दिल से होती पाके उसका सहारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। हर कदम में है उसका साथ, तो मंजिल दूर कहाँ है मंजिल दूर कहाँ। रूहानी रंगों की किरणों से
जन्नत बनाया जहां, हे हे जन्नत बनाया जहां। जिंदगी में मस्ती चढ़ी जब से उसने निहारा, कितना हूं मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। दिल का हाल दिल से सुनाए, गीत यही गाता हूँ, गीत यही गाता हूँ। साथ ना कभी मैं छोड़ूंगा, सच दिल से कहता हूँ, सच दिल से कहता हूँ। बन सहारा वो मेरा मुश्किलों से उबारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यार। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा।
स्टीमर के लिए हम आपको निमंत्रण देते हैं कि इमीडिएटली इस ट्रांसपोर्ट विंग के बाद एक विशेष हवाई जहाज और स्टीमर के लिए कॉन्फ्रेंस है, तो आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, उसका यह पार्ट टू हम जरूर जरूर आपके सामने उपस्थित करेंगे। आपका स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आपको स्टीमर से बहुत प्रेम है। ओके, वेरी गुड। तो यह पार्ट टू जो वर्जन है, आपको अगले हफ्ते यहां पर आइए तो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस है। ओके, थैंक यू।
ओम शांति। अब हम किस किस की वाह वाह करें और किस किस की शुक्रिया करें। आपके सामने नितिन भाई भी है, स्वामी भाई भी है और सबसे बड़ी हस्ती परमात्मा भी है जिन्होंने आपको इस स्थान पर बुलाया, आपको निमंत्रण भेजा और आप इस स्थान पर आए। आपका आना भी सफल हो गया क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें यहाँ सुनी, तो स्वामी भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने जो कुछ बातें हमें सिखाई वो हम सभी अपनी जीवन में अमल करेंगे। आप जरूर ये अपने साथ लेकर जाएंगे तो स्वामी भाई का यहाँ आना भी सफल होगा और आपका आना भी यहाँ सफल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पूरा करते हैं, वापिस आप 8:45 आ जाएंगे क्योंकि प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा। और जो गवर्नमेंट ड्यूटी से आए हैं यहाँ, वो कल सुबह का जो सेशन होगा उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो कॉन्फ्रेंस ऑफिस से उसी स्थान पर जाएंगे वहाँ आपको सर्टिफिकेट